ओम शांति। तो सबको बाबा का प्यार मिला, और क्या क्या मिला? शक्तियां मिली, हाँ जी, खजाने मिल गए, आनंद मिल गया, और ज्ञान गुण शक्तियां प्यार सब मिल गया। इसलिए आज गीत था ना एक मुरली में, कि गीत निकले मन से कौन था, पाना था सो पा लिया। तो बाबा ने हम सबको इस जीवन में सुख शांति कैसे निरंतर रहे, ऐसे अनेकों अनेक मार्ग बताए हैं, विधियां बताई हैं। संगम युग जो है ये खुशियों का युग है, प्राप्तियों का युग है, सदा सुख में रहने का युग है, सदा आनंद मौज में रहने का युग है। क्योंकि बाबा कहते तुम्हें कौन मिला है, मौजों के दाता मालिक मिला है, बाप मिला है। तो संगम युग में हर पल मौज ही मौज रहनी चाहिए। ये छोटा सा समय है संगम युग, जितना हम अपने आप को भरपूर करेंगे उतना ही दूसरों को भी भरपूर कर पाएंगे, और भविष्य भी हमारा उतना श्रेष्ठ होगा, और वर्तमान श्रेष्ठ होगा ही होगा फिर। तो आज बाबा ने जो बताया, अगर जीवन में दुख है उससे मुक्त होना है तो उसका साधन क्या बताया है जी? खुद को देखो, खुदा खुद की कमियों को भरो, देखना नहीं मना जो है उनको खत्म करो, और तो खुदा का प्यार मिलेगा। एक तो ये प्यार की बात होगी, लेकिन एक थी दुख की बात। जीवन में अगर दुख है उसका अगर नाम निशान भी ना रहे जीवन में, तो उसकी क्या विधि बताई? आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति। सारा पुरुषार्थ हमारा इसी पर आधारित होता है। अगर ये हमारे दो शिक्षा के बिंदु अगर हमको पक्के नहीं है तो हमारा पुरुषार्थ लड़खड़ाता रहता है। चलते चलते पुरुषार्थ हमारा शक्तिशाली होता है, कभी उतार है कभी चढ़ाव है। तो उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारा जो आत्मिक वृत्ति है, आत्मिक दृष्टि है, वो थोड़ा कच्ची है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन ही न्यारा प्यारा है, यहाँ की दृष्टि वृत्ति न्यारी प्यारी है। अगर जीवन में दुख का नाम निशान समाप्त करना है तो ये अभ्यास बहुत पक्का करना पड़ेगा। जितना हमारा ये अभ्यास पक्का होगा उतना ही अंत समय हम हलचल में होते हुए भी अचल स्थिति में रह सकेंगे। और परिस्थितियां तो दिन प्रतिदिन हलचल वाली सब हमको दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से पहले ही क्यों ना हम अपने आप को अचल अडोल बना लें। ये तो हमको बार बार इस समय का एक अमूल्य, जो बाबा ने कहा टाइम इज मनी, आज टाइम के बारे में कहा, तो टाइम की समय की पूंजी हमको बार बार मिल रही है थोड़ी थोड़ी, कि अच्छा हम पुरुषार्थ कर लें, ताकि अंत में हम उलाना ना, हमको स्वयं से उलाने वाले ऐसे विचार ना उत्पन्न हो, स्वयं के पश्चाताप का भाव उत्पन्न ना हो कि जो हमको कर लेना चाहिए था और वो हम कर सकते थे और हमने किया नहीं। तो सबसे ज़्यादा दुख जो ना हमको स्वयं के ऊपर ही होगा। अगर हमको इस लाइफ में भी अगर कोई दुख देता है तो अंत में वो इतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन जो स्वयं हमने दुख के ऐसे रास्ते बना के रखे हैं वो हमको तंग करेंगे, उनसे हम दुखी होंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा ना आज, काम क्रोध लोभ अहंकार इनसे तो मुक्त हो जाते हो, लेकिन कभी कभी है जी अपने स्वभाव संस्कार ये हमको तंग करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उनको निकालना बड़ा मुश्किल, क्योंकि बहुत प्यार हो गया उनसे, इन कर्मिंद्रियों में वो रच बस गए हुए हैं, रग रग में समागे हुए हैं। अब उन संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए साधना तो करनी पड़ेगी, और साधना भी ऐसा नहीं है कि कभी कभी करनी है, निरंतर योगी, बाबा ने कहा निरंतर योगी जीवन, तो हमारा जो जीवन है वो निरंतर और नेचुरल योग्य जीवन होना चाहिए, और वो हो जाता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है केवल हम खाली योग में बैठे हैं तो वही योग है। अगर हम बाबा की सेवा कर रहे हैं उसमें हमको बाबा की स्मृति है तो वो भी एक योग युक्त अवस्था है। अगर हम बाबा का परिचय दे रहे हैं किसी को, योग युक्त होके आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति से, तो वो भी जैसे एक योग युक्त हमारी स्थिति है, वो भी हमारी एक निरंतर योगी अवस्था में बनाने में सहायक सिद्ध होगा। वो अगर हम धारणाओं की बात है, धारणाओं का या ज्ञान का मनन कर रहे हैं चिंतन कर रहे हैं, तो भी हमारी योग युक्त स्थिति है। कर्म करते अगर हमारा निमित्त भाव है, कर्ण करावनहार की स्मृति है, तो भी हमारी अवस्था योग युक्त बनती जाएगी। तो हमको खुद ही स्वयं पर थोड़ा नज़र रखनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ के लिए बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो हम खुद बना देते हैं, मुश्किल है नहीं है, क्योंकि जब बच्चे को बाप का परिचय हो जाता है तो बच्चा कभी बाप को भूलता है? नहीं भूलता ना। उसको पता है कि जो बाप की प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है, जो बाबा के संस्कार है वो मेरे संस्कार हैं, जो बाप का स्वभाव है वो मेरा स्वभाव है। तो वो सारी हमारी संस्कार धीरे धीरे वो भरते जाते हैं अगर हमको ये स्मृति रहती है कि मैं कौन हूँ। इसलिए दादी जानकी जी हमेशा क्या करते क्या कहते दो ही बातें सुनाती थी, मैं कौन और मेरा कौन, दो ही बातों पर सारा पुरुषार्थ आधारित है। अगर निरंतर हमको सारे दिन में ये स्मृति बनी रहती है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, तो निरंतर और नेचुरल हमारी योग युक्त अवस्था बनी रहेगी। अगर ये स्मृति नहीं रहती है तो मैं तो फिर भी याद रहता है, लेकिन फिर मैं जो वो बॉडी कॉन्शियस वाला मैं हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ना, शरीर भान में आते हो तो दुख होता है, आज के वरदान में था। जैसे आत्मिक स्मृति दृष्टि वृत्ति में आएंगे तो सुख ही सुख है, ब्राह्मण जीवन में सुख ही सुख है। अगर हम इन दो बातों पर निरंतर अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, गहराई से नज़र से बारीकी से अटेंशन रखकर चलते हैं आत्मिक दृष्टि वृत्ति का, क्योंकि लंबे समय से हमको जन्म जन्म से देह को देखने की आदत पड़ी है और ये आकर्षित करता है, स्वयं का देह भी और दूसरों का देह भी। जितना हम स्वयं के देह से डिटैच होने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ही दूसरों के देह से भी हम डिटैच रहेंगे। पुरुषार्थ पहले स्वयं का करना है, नहीं तो सारे कर्मचारी जो बाबा ने कहा राज्य सत्ता, ये सारे धोखा देते रहेंगे। दुख और धोखा वास्तव में ये हमारे द्वारा ही उसके बीज बोए जाते हैं। कोई हमको दुख नहीं देता है, कोई धोखा नहीं देता, दुख और धोखा हम खुद ही तैयार करते हैं, किसी को क्या पड़ी है। वो तो वास्तव में हमारी मेंटेलिटी ही ऐसी है दुखी रहने की हो गई है, बार बार स्वयं से धोखा खाने की हो गई है। दूसरा क्यों धोखा देगा, धोखा तो हम पहले स्वयं को दे रहे हैं। जो भी हमारे कर्मचारी कर्मेंद्रियां हैं इनसे हम सारे दिन में कितना धोखा खाते हैं। इसलिए बाबा ने क्या, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो तो खुदा का प्यार मिलेगा। अब प्यार के पात्र तो बनना चाहते हैं, संकल्प श्रेष्ठ है बाप समान बनने का, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा, बीच में स्टडी भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं होती। क्या कारण है? अटेंशन की कमी है, अलवेलापन है। और कैसे अलवेलापन आ जाता पता भी नहीं चलता। वो जब हम बाबा से मिलते हैं या योग में बैठे हैं या मुरली क्लास सुन रहे हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर वैसा है, सबके शक्तिशाली संकल्प हैं, सभी ऊंची ऊंची मनोस्थिति के साथ बैठे हुए हैं कि बाबा के माँ वाक्य सुन रहे हैं। लेकिन जैसे हम उस संगठन से बाहर आते हैं तो बाहर क्या होता है, माया पकड़ने के लिए खड़ी है। इसलिए बाबा कहते हैं जो स्थिति साधारण हो जाती है, साधारण होते होते फिर विस्मृत हो जाती हो, फिर माया के वश हो जाते हो, अधीन हो जाते हो। इसलिए हमेशा हमको स्मृति समर्थ स्मृतियों में संपन्न बनने के लिए कुछ स्वयं का पुरुषार्थ करना है। तो अभी आज हम आज की मुरली पर ही चर्चा करेंगे, तो पहले आप सुनिए आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा। क्योंकि ये हमारी डेली खुराक है और ये हम कम खाते हैं। हम योग करने के ताक में रहते हैं, योग कर लें, सेवाएं भी करनी हैं, सेवाओं में तो अच्छा है, सेवाओं से दुआएं भी मिलेंगी, लेकिन जो पढ़ाई है ये भी बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई के हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। संस्कार क्या है वास्तव में? हमारे जो जन्म जन्म के विचार पैदा करने की जो आदत पड़ गई है, जो सारे विचार हमारे कर्मेंद्रियों में समागे हुए हैं, तो पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज को क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ इनकम। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा, इस सृष्टि में अनादि नियम कौन सा है आज की मुरली के अनुसार, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर निकालने हैं। भले पांडासी निकालो, वो याद रखो। सबसे बड़ा विज्ञान कौन सा है, योग, योग बल, योग बल नहीं, दूसरी बात है। विज्ञान भी एक योग है, योग बाबा ने योग के साथ जोड़ा, लेकिन सबसे बड़ा विज्ञान कहीं और उसका जिक्र किया। तो अनादि नियम कौन सा है आज की मुरली के अनुसार, क्योंकि ज्यादा मुरली याद नहीं थी, को टेंशन नहीं लेने की। 10 शब्द ही पकड़ लें हम, 10 शब्द पकड़ के उन पर थोड़ा चिंतन करें तो वो हमारे संस्कारों में समा जाएंगे। उन्हीं 10 शब्दों को बार बार बुद्धि में घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, जब तक वो हमारे में समा नहीं जाए। तो अनादि नियम कौन सा बताया, हाँ, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, ये सृष्टि का आदि नियम, अनादि नियम है। अगर हम रिगार्ड देते हैं तो रिगार्ड मिलेगा, देना ही लेना है, और लेना अर्थात गवाना, क्योंकि बाबा कहते तुम दाता के बच्चे हो, देवता हो, देने वाले हो। तो हमको अगर गुड वाइब्रेशन देने हैं, सबको खुशी देनी है, शक्ति देनी है, तो पहले स्वयं को भरपूर करना पड़ेगा, स्वयं को रिगार्ड देना पड़ेगा। हम स्वयं को रिगार्ड अर्थात सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वमान में स्थित कम रहते हैं। स्मृति तो रहती है कि मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना नहीं बन रहा अभी तक, उसमें कहीं दूरी बनी हुई है। वो चीज़ हमारी है, पता है हमारी चीज़ है, लेकिन उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे वो अलमारी में रखी हुई है। अब कोई चीज़ हमको खाने के लिए दी जाए, अगर डॉक्टरी अगर कोई देता टॉनिक, ये खाएंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, और हम लेके हमने एक ही बार खाया और दोबारा खाया ही नहीं, तो हम ठीक होंगे उससे? तो ऐसे ही हम ज्ञान के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे हैं। और इतना कीमती समय चल रहा है, इतना नाजुक समय चल रहा है, किस दौर से संसार गुजर रहा है, वो हमसे देखते हुए भी तो कितनी हमें स्वयं पर अटेंशन देने की जरूरत है। तो स्वयं का रिगार्ड रखना है। कैसे रिगार्ड रखेंगे? दूसरों का रिगार्ड रखने से पहले स्वयं का रिगार्ड। कैसे रिगार्ड रखेंगे स्वयं का? हाँ, जो बाबा ने हमको श्रीमत दी है, जो उसकी सिलेक्शन है, वो हमको स्मृति रहे। जो वो हमको रोज जो खजाना बांट रहा है, उसको मैं थोड़ा पढ़ूं, उसको थोड़ा मैं अपना बनाऊं, उससे हमारा प्यार बढ़ता जाए, हमारी अटैचमेंट बढ़ती जाए उससे, तो वो हमारे संस्कार बन जाएंगे। किसी के साथ दोस्ती कैसे होती है? उसके साथ हम लंबे समय तक रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उससे कुछ लेन देन करते हैं, तो बाबा से हमारा प्यार कैसे होगा? जब बाबा के ज्ञान को हम बार बार पढ़ेंगे, उसकी दी हुई चीज़ को हम यूज़ करेंगे, उसके दी हुई बातों को चर्चा करेंगे, उसको अपना बनाएंगे, तभी तो खुदा का प्यार मिलेगा। नहीं तो केवल स्लोगन रट लेने से थोड़े नहीं होगा। वो सारी चीज़ें हमारी तब होगी जब हम उसके पर उनके प्रति हमारा प्यार हो जाएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मुरलीधर से प्यार तब होगा जब मुरली से प्यार है। तो इस सृष्टि का आदि नियम कौन सा है? अनादि नियम, रिगार्ड देना है स्वयं को, रिगार्ड दो, रोज रिगार्ड देना स्वयं को ही, कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। कल की मुरली या परसों की मुरली है, तुम इस संसार में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली आत्माएं हो। तो कितना सौभाग्य हमारा, पद्मा पद्म भाग्य है कि स्वयं भगवान ने आकर हमारी उंगली पकड़ी है। बाबा कहते हैं तुम तो ढूंढते ढूंढते थक गए, ढूंढा किसने आगे तुमको? स्वयं भगवान ने आकर हमको ढूंढा है। तो कितनी सारी वो खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम दूसरों की उंगलियां पकड़ के रखे हुए हैं मन से। बाबा की उंगली कम पकड़ी है, वो सर्वशक्तिवान है, उसकी उंगली को छोड़ देते हैं हम। जो संसार वाली आत्माएं हैं उनकी उंगली को पकड़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात बार बार हमारा मन बुद्धि वहां चला जाता है। जैसे यहां भी सेवा में आते हैं तो जिस लक्ष्य से आते हैं मधुबन में, उसी लक्ष्य के अनुसार हमारे पुरुषार्थ चलना चाहिए। नहीं तो हम यहां भी देखते हैं सेवा में आए हैं, ठीक है घर में थोड़ा फोन वोन करना चाहिए, लेकिन घंटों घंटों तक मोबाइल फोन चलते रहते हैं, वीडियो कॉल दिखा रहे हैं, क्या जरूरत है दिखाने की, छोड़ो। जिसका पुरुषार्थ है अपने हम खुद को अच्छा बना लें, अपने आप उनका वो खिंचावट होगी उनको। हमारा चलता फिरता जीवन जो लाइब्रेरी की तरह एक चलती फिरती प्रयोगशाला है, प्रैक्टिकल में वो देखेंगे अपने आप खींच के आएंगे। बाबा कहते सुनाने का समय चला गया भाई, सुनाते सुनाते तो क्या होगा, सुन हो गए सारे, हम भी तो कितने सुन हो गए, दूसरों को परिचय हम तो दे देते हैं लेकिन मुरली सुनते सुनते हम भी कितना सुन हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा विज्ञान कौन सा बताया बाबा ने, योग, और कहीं बताया, वो तो बाबा ने कहा तुम्हारा विज्ञान है योग, लेकिन सबसे बड़ा विज्ञान कौन सा बताया, श्रेष्ठ कर्म, और कौन सा बताया, योग बल, और सेकंड में फुल स्टॉप, यह सबसे बड़ा विज्ञान बाबा ने जो मूल्य में कहा, एग्जाम्पल दिया ना, जैसे विज्ञान क्या करता है, मिटा देता है सेकंड में किसी भी चीज को, तो बाबा का इतना बड़ा विज्ञान है कि सेकंड में जब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो सारी स्मृतियां, जो पुरानी स्मृतियां पुराने संस्कार सब खत्म, बिंदु माना बिंदु। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, रोज रात्रि को फुल स्टॉप लगा के सो जाओ, क्योंकि दिन भर में गलतियां तो बहुत होती रहती है। परसों की मुरली में था, श्रीमत पर ना चलना ही डैश है, विकार है, कितनी बड़ी परिभाषा दे दी। तो सारे दिन में कितनी श्रीमत हम छोड़ देते होंगे, कितनी सूक्ष्म पुरुषार्थ आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे सेंटेंस सुन के ना एकदम ठंडे हो जाते हैं हम, जो भी पुरुषार्थ ना धड़ाम करके नीचे, एक बाबा एक ऐसा सेंटेंस बोलते हैं धड़ाम करते फिर नीचे, फिर चींटी की तरह चढ़ो। और ये होना चाहिए, क्योंकि धीरे 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 हमें अपनी कमियों का पता चलना चाहिए। तो आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, कौन सी सत्ताएं देखी, चार सत्ताएं। उन चार सत्ताओं को जीवन में लाने से क्या होगा, हम बापसमान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। तो कौन किससे मिल रहा है आज, सर्वशक्तिवान बाप किसको देख रहे हैं, अपने बच्चों को। कौन से बच्चों को, जिनमें सर्वशक्तियां हैं। तो कौन सी सत्ताएं देखी, दुनिया वालों के पास कितनी सत्ताएं हैं, हमारे पास कितनी है, चार। टोटल कितनी होगी, चार ही के साथ होगी। तो दुनिया वालों के पास तीन सत्ताएं कौन सी है, क्रमबद्ध सुनाओ जो बाबा ने, सबसे पहले धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान सत्ता, चौथी वो किसके पास है, उनके पास नहीं है, नहीं है? हाँ, श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं वो उनके पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनके पास है तीन सत्ताएं, तुम बच्चों के पास है चार सत्ताएं। तो देखो बाबा ने हमको कितनी एक्स्ट्रा कितनी समझ दे दी। तो इन सत्ताओं से क्या करते हैं हम, चार सत्ताओं से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करते हो। और धर्म सत्ता अर्थात धारणा, अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी और खुशनुमा जीवन, जीवन जीने की कला। तो हमारे जीवन में सदा हम श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं, जीवन खुशनुमा रहता है, या कभी कभी माया रावण भी प्रवेश कर जाता है, कर तो जाता है, कर जाती है ना, तो हम उसको आने देते हैं, कोई बात नहीं चला जाएगा वो भी, लेकिन पुरुषार्थ हमको निरंतर करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो ये चार प्रकार की सत्ताएं थी, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, जो बाबा ने हमको बताई है। तो श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता अर्थात क्या बताया, श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता कौन सी परिभाषा दी उसकी, योग बल का, और चार बातें बताई उसमें, मुरली के बीच में है वो चार बातें। हाँ हाँ, निर्विकल्प, निर्विज्ञन, निर्विकर्म और निराकारी सो साकारी। इस स्थिति में स्थित रहकर हम कर्म करते हैं तो ये हमारी श्रेष्ठ कर्म है, और ये कर्म ना केवल अभी हमारे बल्कि भविष्य 21 जन्म के लिए भी ये पुण्य की पूंजी जमा होती है। और इससे बाबा ने कहा तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह बनते हो, और बेफिक्र बादशाह बनकर दुनिया वालों को क्या करते हो, चैलेंज करते हो। क्या चैलेंज करते हो? अगर बेफिक्र बादशाह जीवन जीना है तो यहां आकर सीखो। अगर जीवन में श्रेष्ठ कर्म नहीं है तो जीवन कैसा है? तो ये जीवन मानव जीवन कैसा हो गया? पशुतुल्य हो गया, पशुओं के समान हो गया। क्योंकि संसार में कर्म कैसे कर रहे हैं? स्वार्थ, अपने लिए अपने लिए। लेकिन हमारा हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प कैसा है? संसार के लिए है, ना केवल अपने लिए बल्कि विश्व के लिए है। तो कितना परिवर्तन हो गया, महान परिवर्तन हो गया। और राज्य सत्ता अर्थात स्वयं पर राज्य, और अपने और अपने साथियों, साथी कौन से? ये कर्मेंद्रियां, इन पर राज्य, और दूसरे साथ वाले साथी उन पर भी, अर्थात उनका भी दिल जीतना। राज्य अर्थात उन पर ये नहीं है कि उनको प्रेशर डालना, उन पर अथॉरिटी, उन पर अधिपत्य जमाना, अधिकार जमाना, नहीं, अर्थात उनका दिल जीतना। और अगर हम उनका दिल जीतेंगे उनके अनुसार, उनका दिल जीतने से हमको क्या मिलेगा? कौन सी दुआएं मिलेगी, कौन से गीत गाएंगे वो? वाह वाह के और संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा होगी। और इस संतुष्टता का सर्टिफिकेट तो सबको लेना ही है। कितने प्रकार के संतुष्टता के सर्टिफिकेट बताए बाबा ने? चार प्रकार के। कौन कौन से? स्वयं से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, बाप से, और तीसरा चौथा ड्रामा से। चलो जितने मर्जी लगा लो, सब संतुष्ट है। तो हाँ, मेन तीन ही है, बाकी जितने मर्जी बना लो। सारा ज्ञान तो बाबा ने दे दिया, बोला खेलते रहो अभी। तो संतुष्टता ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी उपलब्धि है संतुष्ट रहना। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, क्योंकि जीवन में सब चीजें आएंगी आएंगी। अगर कोई हमारी स्तुति करता तो निंदा करने वाला भी अगले बोर्ड पर मिल जाएगा। तो इन सब चीजों से हमको डिटैच रहना। और संतुष्टता के बाबा ने कहा 5% तो लोग मिल ही जाएंगे आपको जो संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि क्यों नहीं होंगे संतुष्ट? क्योंकि संस्कार अपने हैं। लेकिन हमको फिर भी उनसे भी, उनके प्रति भी हमारा दृष्टिकोण ऊंचा चाहिए, मर्यादा पूर्वक, श्रीमत अनुसार। ऐसा नहीं हम श्रीमत की लकीर के बाहर जाके उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें, नहीं, श्रीमत के अनुसार सबको संतुष्ट करने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। तो ये थी राज्य सत्ता। राज्य अर्थात राजा, अर्थात दाता, अर्थात देने वाला, अर्थात सबको संतुष्ट करने वाला। राजा अर्थात सबका डैश प्राप्त करने वाला, क्या वो अधिकारी होगा तो सबका क्या मिलेगा? उसको सम्मान मिलेगा। बाबा ने कौन सा शब्द बोला? है तो सम्मान ही है, ठीक बोल रहे, लेकिन बाबा ने दूसरा शब्द कौन सा यूज किया? है तो स से शुरू, र से खत्म होता है, सत्कार। सत्कार मिलेगा, जितना अधिकारी उतना सत्कारी होगा वो। तो और विज्ञान की सत्ता से क्या क्या उपलब्धियां बताई? योग बल और संसार का विज्ञान और ये विज्ञान, वो है हद के विज्ञानी, तुम हो बेहद के विज्ञानी। हद के विज्ञानी क्या करते हैं? चंद्रमा तक पहुंचते हैं, सूरज तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन तुम बच्चे सूरज, चांद, सितारों से भी पार चले जाते हो। यहां टाइम भी नहीं खर्च होता है, उनका तो टाइम भी खर्च होता है। संसार में जो रिसर्च करते हैं कितने सालों साल बैठे रहते हैं, फुर्सत नहीं रहती है उनको, तो शादी करने की फुर्सत भी नहीं रहती है। अधिकतर साइंटिस्ट आप देखेंगे सब अनमेरिड ही होते हैं, अधिकतर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बताओ उनको रिसर्च के प्रति कितना प्यार होता है, वो हद का विज्ञान है। तो हमारा तो बेहद का विज्ञान है, इसलिए बाबा कहते तुमको तो सारे मैरिज तो छोड़ो, सारे संसार को भूल जाना है। देह सहित देह के सर्वस्पंदों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। तो सारा विज्ञान तो इसी में आ जाता है। तो कितना बड़ा विज्ञानी बना दिया बाबा ने हम सबको। तो वो हैं हद के विज्ञानी, उनका टाइम भी खर्च होता है, मनी भी खर्च होती है, एनर्जी भी खर्च होती है, कितने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कितना सामान इकट्ठा करना पड़ता है, सालों साल लग जाते हैं। और बाद में सफलता मिले वो भी पक्का नहीं होता है। अच्छा, सफलता मिल भी जाती है तो जरूरी नहीं है कि उस साधन से हमको सुख ही मिलेगा। अगर सुख मिलता है तो उसके पीछे दुख भी खड़ा है। सुख तो वाल पेपर है, स्क्रीन में जैसे दिखाई, स्क्रीन में सामने दिखाई देता ना अच्छा अच्छा सीन, है ना, पीछे जैसे देखो तो क्या आएगा, पीछे जैसे नेगेटिव सीन भरे हुए हैं। तो इस संसार के अगर साइंस में विज्ञान में अगर सुख भी है तो दुख भी है उसमें। बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना एयर कंडीशन का, अगर वो शीतल कर देता है तो आप भी क्या करते हो, आपका विज्ञान क्या करता है, आप भी योग युक्त होकर जब चाहे शीतला स्वरूप बन जाते हो, जब चाहे ज्वाला स्वरूप बन जाते हो। और ज्वाला स्वरूप कैसे बनते हैं, ज्वाला स्वरूप थोड़ा जल्दी बन जाते हैं दो तरीके से, एक तो योग से ज्वाला दधकती है, दूसरी प्रयोग से भी दधक जाती है, वो बिना योग के ज्वाला दधक जाती है। तो बाबा ने हमको कितना बेहद के विज्ञानी बनाया। तो सबसे बड़ा विज्ञान है योग। अभी योग के हमको ना सूक्ष्मता में जाना है, सूक्ष्मते अति सूक्ष्म होते जाना है, और योग के प्रयोग सबसे ज्यादा हमें स्वयं पर करने हैं, इन कर्मेंद्रियों पर करने हैं, स्वयं का शुद्धिकरण करना है। जब तक हमारा ये देह संपूर्ण रूप से योग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, योग के अलग अलग अवस्थाओं से परिचित नहीं हुआ, योग के अलग अलग अवस्थाओं के संस्कार हमारे अगर नहीं बने तो हम ऊपर ऊपर से तैरते रहेंगे, तो मन बुद्धि ना भटकता रहेगा। इसलिए जब भी हम थोड़ा सा योग में बैठते हैं तो योग की गहराई में जाना, सूक्ष्मता में जाना है, और बाबा से जैसे नज़दीक स्थूल रूप से भी उसको यूज़ करना है। बाबा ने कितनी बार हम सबको कहा कि बच्चे तुमको बुलाओ, तुम मुझे बुलाओ, बाबा आ जाओ, और बाबा तुमके लिए तुम्हारे लिए हाजिर है, दिल से पुकारो। और योग के प्रयोग करने छोटे छोटे, जैसे बाबा को बुला लिया और यहाँ हाथ में उन्हें पकड़ लिया, जैसे बाबा को पकड़ के रखा हुआ है, सारा मन बुद्धि जैसे हाथों में समझो, और जैसे भगवान को पकड़ा, भगवान की सर्वशक्तियों को पकड़ा हुआ, वो स्वयं हमारी मुट्ठी में आ गया है। बाबा ने कहा ना संगम पर भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है। भक्ति में क्या कहा था, जब आप आएंगे तो गिन गिन कर हिसाब लेंगे, तो अभी गिन गिन कर पुरुषार्थ करना है, गिन गिन कर बाबा को बुलाना है, उसका यूज करना है, वो तो हमारे लिए बैठा हुआ है। अलग अलग तरीके से योग के प्रयोग करने हैं। कभी बाबा को आंखें बंद करके आंखों में समालो, और वो स्मृति रखनी है कि आंखों में समाया हुआ है, नहीं तो ऐसा नहीं है आंखें दूसरी तरीके से बंद हो जाएं फिर, या फिर तीसरे तरीके से ऊपरी चले जाएंगे। तो आंखों में बंद करके रखना, उसको समा के रखना है। आज भी मुरली में बाबा ने कहा ना, बाप को अपना साथी बनाएंगे तो क्या होगा, जितना समीप रहेंगे उतना शक्ति का अनुभव होगा। पार्टियों के साथ मुलाकात स्टार्टिंग में, बाप को साथी बनाकर रखेंगे तो बाप की शक्तियां अपनी अनुभव होंगी, और अंत में तो यही होगा पुरुषार्थ। अंत में बाबा ने पेपर भी बताया, कौन कौन से पेपर आएंगे, हाँ उसमें तो दो ही बताए हैं, प्रकृति के पांच तत्वों के और पांच विकारों के पेपर आएंगे, और उस समय कौन सा पुरुषार्थ करना है, सेकंड में फुल स्टॉप। तो कितना बड़ा पुरुषार्थ, लंबे समय की अवधि, लंबे समय का अभ्यास ये, इसलिए बाबा कहते अचानक एवरेडी और बहुत काल का अभ्यास। तो अभ्यास हमको निरंतर, भले दो दो सेकंड का करो, दस दस सेकंड का करो, छोटे छोटे प्रयोग करो, लंबे समय तक नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं छोड़ दो, दो मिनट बैठो, पांच मिनट बैठो, दस मिनट बैठो, लेकिन ये अभ्यास हमको दिन में बार बार करते रहना है, वो हमारी आदत बन जाए, नेचुरल नेचर बन जाए, करना ना पड़े, अपने आप ही हो जैसे बताया ना योगी जीवन है, वो साइंस के साधन चैन देते हैं, लेकिन तुम बिना साइंस के साधनों से कैसे सोते हो, चैन से सोते हो, वो बेचैनी भी पैदा कर देते हैं, लेकिन तुम चैन से सोते हो, चैन के साथ रहते हो, आराम से रहते हो। तो कितना ऊंचा बाबा ने साधन दे दिया हम सबको, कौन सा साधन, ज्ञान योग के साधन। तो हमको अपनी एक सूची बनानी है कि हमारे पास में कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो हमारे पुरुषार्थ को सहज कर सकते हैं, वो खुद पर ही नजर रखनी पड़ेगी। और क्या कहा बाबा ने मुरली में, हाँ साइंस के साधन जो क्या करते हैं, अगर मन उदास होता तो संसार में क्या करते हैं, मनोरंजन कर के लिए क्या क्या करते हैं, गीत बजाते हैं, फिल्म देखते हैं, और यहाँ तुम बच्चों को मनोरंजन के अनेक साधन मिले हुए हैं, कौन कौन से, लेकिन यहाँ भी कभी कभी मनोरंजन दूर से चले जाते हैं और उसको हम छुपाते हैं, और वो ही हम अपने लिए जैसे कुआं खोद रहे हैं, देख तो लेते हैं, उसमें मन में द्वंद्व चलता है, क्या चलता है, अपने स्मृति कह रहे हैं हम सबके लिए नहीं, सबके अपने स्मृति। अगर हम थोड़ा सा भी देखते हैं, समझ लीजिए कोई किसी ने क्लिप भेजा है, भले वो हंसी मजाक वाला ही है, उसमें भले बातें कुछ हैं जो हमको जीवन में काम आने वाली हैं, लेकिन अंदर में मन में क्या द्वंद चलता है, अगर 2 मिनट का वीडियो हो तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं पूरा, बाद में देखा जाएगा, फिर दूसरा वीडियो आया, फिर तीसरा, करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं। और यही गिल्ट कॉन्शियस पैदा हो जाती है, यही मन में सूक्ष्म से डिप्रेशन चालू हो जाता है, हम खुद ही डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं फिर, और फिर दूसरों को सुनाते भी नहीं है। दूसरों के दिल में क्यों नहीं बात लगती, हमारे मुख से निकले हुए बाबा के महावाक्य दूसरों के दिल तक क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्वयं के दिल को हम धोखा दे रहे हैं। आई बाबा ने कहा ना, मजबूरी से पुरुषार्थ करते हो, मोहब्बत से, दिल से करते हो, दिखावा मात्र करते हो। तो दिल से करना, दिल से अपने खुद की कमियों को भरना है, कितना पावरफुल स्लोगन है। खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तो खुदा का प्यार मिलेगा। तो वही गिल्ट कॉन्शियस चालू हो जाती है, इसलिए वो वाले मनोरंजन तो ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा तुम एकांत में भी जैसे जैसे वो संसार वाले तो उदास हो जाते हैं, लेकिन तुम उदास क्यों होते हैं, दास बन जाते हैं। अगर हम भी दास बन जाते तो हम उदास हो जाते हैं। दास किस चीज से, कर्मेंद्रियों के दास हो गए, जीव के दास हो गए, आंखों के दास हो गए, गप शप मारने के दास हो गए। बाबा ने कहा तुम हो बेफिक्र बादशाह अधिकारी, तुम हो राजयोगी, प्रजायोगी नहीं हो, अधीन नहीं हो। प्रजा अर्थात अधीन रहने वाली, राजा अर्थात अधिकार में रहने वाला। तो हम राजा बच्चे हैं, बाबा की राजा बच्चे हैं, तो स्मृति रखनी पड़ेगी, समर्थ स्मृतियों का हमको खुद स्टॉक रखना पड़ेगा भर के अंदर, और बार बार उसको पलटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। नहीं तो प्रकट जो परिवर्तन की स्पीड है, जो बाबा ने मुरली में कहा आज, स्पीड क्यों नहीं बढ़ती है कि मुरली भी सुन रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अच्छी तरह से सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है। चलते 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 साधारणता में आते हैं, और साधारणता के बाद क्या होता है, विस्मृति में आते हैं, और विस्मृति के बाद प्रेशर लो। बाबा कहते अगर थोड़ा भी साधारणता में आओ तो उसको ऐड करो, शक्तिशाली निरंतर याद होनी चाहिए। अभी साधारण समय, साधारण याद वाला समय नहीं रहा है, शक्तिशाली याद वाला। और बाबा ने कहा अंत में जो इस इम्तिहान में प्रैक्टिकल में क्या करते हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, हाँ, जो इसमें इम्तिहान में एग्जाम्पल बनते हैं वो अंत में भी उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो एक्स्ट्रा मार्क्स तभी मिलेंगे जब हम कुछ एग्जाम्पल बनेंगे, किसी भी चीज़ में, एक भी चीज़ में अगर हमारी मास्टरी होगी कि हमारी दृष्टिवृत्ति एकदम शुद्ध पवित्र होगी तो भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, और वो ही हमारा सिंपल सिंगल पुरुषार्थ हमारे सारे पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ा देगा। तो हमारी धारणाएं, धर्म अर्थात बाबा ने कहा धारणाएं, कितनी हमारी धारणाएं मजबूत हैं, कितना हम आनंदमय स्थिति में रहते हैं, वो स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। तो विज्ञान सत्ता अर्थात योग की नवीनता, बाबा ने मुरली में कहा था ना, तो योग तुम नवीनता के लाइट हाउस माइट हाउस हो, तो योग में बहुत नवीनता चाहिए, क्योंकि एक ही तरीके से हम प्राचीन परंपरा से चलते रहते हैं तो रस नहीं आता है फिर। इसलिए बाबा को अलग अलग तरीके से, कभी बाबा को आंखों में संभालो, कभी बरदानी हाथ उसका अपने सिर पर रखो, या कभी सोचो बाबा जैसे मुझे यहाँ से निकाल के ले गया है, सूक्ष्म वतन में बिठा दिया उसने, या कभी परमधाम में बिठा दिया है, या कभी वो ही नीचे आ गया है, कि या कभी वो ही मेरी परिक्रमा कर रहा है, या मैं कभी उसकी परिक्रमा कर रहा हूँ, या कभी हम दोनों ही विश्व की परिक्रमा कर रहे हैं। ये मनोरंजन हो गया सारा, मनोरंजन वाला योग चाहिए, किसी ना किसी तरीके से बाबा के साथ हमारी बुद्धि योग जुटा रहना चाहिए। अपने आप को अंदर ही अंदर कमेंट्री देते रहना है, कमेंट्री की आदत डालनी है, दूसरों की सुनते हैं वो भी अच्छे, लेकिन अपनी कमेंट्री बनानी है, और वो कमेंट्री एक है अंदर ही अंदर चलना, दूसरा उसको लिखना। जब हम वो लिखेंगे तो बहुत शक्तिशाली पुरुषार्थ होता वो, क्योंकि जो चीज़ हमने लिखी है वो हमारे संस्कारों में समा जाती है, उसमें हमारी कर्मेंद्रियाँ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती हैं, मन बुद्धि संस्कार पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो हमारे धीरे धीरे संस्कार बन जाते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं, क्यों उनको बार बार लिखने के लिए कहा जाता है, सुलेख अच्छा लिखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनके संस्कार बन जाते हैं वो। माँ बाप भले दोनों टीचर हैं फिर भी बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, क्यों, घर में भी तो पढ़ा सकते हैं, क्यों स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ माहौल मिलता है ऐसे सीखने का। तो हमको भी ऐसे योग के नए नए प्रयोग सीखने हैं, नए नए कमेंट्री तैयार करनी है, जैसे आज की मुरलियाँ पूरी उसको कमेंट्री में तब्दील किया जा सकता है, जैसे मास्टर सर्व, जैसे सर्वशक्तिवान बाप दादा सर्वशक्तियों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं, ये पहले सेंटेंस मुरली का आ गया, चेंज हो गया सारा युग में। सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने उसमें तो बताया सर्वशक्तियों के बालों बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन हम अपने तरीके से उसमें इन्वॉल्व अपने जीवन में कर सकते हैं। जैसे विजुलाइज करना है, जैसे सर्वशक्तिवान बाप दादा अवतरित हुआ और मुझे देख रहा है, मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दे रहा है और सारी शक्तियां जैसे मेरे अंदर में समा गई हैं, वो सारी शक्तियां मेरे कर्मेंद्रियों में समा गई हैं, विजुलाइज करना है, तो धीरे धीरे मुरली धीरे धीरे कमेंट्री में तब्दील हो जाएगी। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा अमृत वेले खाली योग करने का समय नहीं है, चिंतन करने का टाइम भी है। शतों पर घूमो, लिखो, चिंतन करो, चिंतन से हमारी बुद्धि विशाल होगी, जो उसमें ब्लॉकेज ना वो खुलेगी, जो हमारी कमी कमजोरी वो खत्म हो जाएंगी, नहीं तो जो कमी कमजोरी अंदर से बैठी है ना वो बिना चिंतन के खत्म नहीं होगी। चिंतन के साथ योग करेंगे तो वो हमारी कमी कमजोरी खत्म हो जाएंगी। अगर खाली हम योग में बैठे रहेंगे तो सुख वो कमी कमजोरी तो बहुत गहरे तल पर बैठी है, वो बैठी है यहाँ और हमारा योग ऊपर ऊपर ही लगा, बाँ तक तो हमारा हाथ ही नहीं पहुँच रहा है, बाँ तक तो हम सोच ही नहीं रहे, तो रग रग में वो कमियां समाई हुई हैं, और जैसे हमको वो एटमॉस्फेयर मिलता है वैसे हमारे कदम उस दिशा में चले जाते हैं। अगर कोई गपशप मार रहा है तो अगर हम गपशप मारने वाले मारे अगर संस्कार नहीं गए तो वहां हम रुक जाएंगे, कानों को बहुत अच्छा लगेगा और बड़ा मजा आएगा उस समय, वो टाइम भी जल्दी बीत जाता है और फिर हाँ में हाँ मिला देंगे और पापों का बोझ और सिर पर चढ़ गया। तो श्रीमत पर ना चलना बेकार है, ये भी एक तो बेकार हो गया ना, पैदा हो गया ना। अगर कहीं देखने का रस है तो कहीं टीवी फिल्म चल रही होगी, पहले के संस्कार पड़े हुए हैं, जैसे डिशम डिशम वाला आएगा तो सामने देखने खड़े हो जाएंगे, फिर घर में भी देखेंगे, फिर बोलेंगे कोई बात नहीं, बाबा को भी याद कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, बैलेंस बनाया हुआ बैलेंस। तो ये माया जो ना सूक्ष्म रूप से हमारे पर बार बार प्रहार करती रहती है, चोट करती रहती है, हमारे दिल को तोड़ती रहती है, तो ऐसे सूक्ष्म रूप से देखना है। नहीं तो क्या होता है, आजकल तो माया तो सबके पास ही है, बच्चों के पास भी आ जाती है, मोबाइल है ना, मोबाइल आता चलाने, हाँ आता है, छोटे छोटे बच्चे देखो, और मोबाइल में तो व्हाट्सअप, उसको चलाते रहेंगे, और बाबा को चिट्ठी लिखने में तो फिर मन मानता नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप जैसे मैसेज आएगा ना उसको देखने में फटाफट देखेंगे हम। और हमको बोले कि बाबा को चाय लेने पत्थर के लिए अपने दिल का हाल चाल सुनाओ तो भारी पड़ जाएगा, तो लिखो बाबा को पत्र लिखो, आज मैंने इतना समय व्हाट्सअप देखा, मैं आपको याद कर सकती थी, कर सकता था लेकिन किया नहीं, इतना समय देखा और देखते तो है ही ना हम, तो हम स्वयं प्रति हमारी बहुत लापरवाही है, ये लापरवाही कहीं हमको डूब ना लेके जाए, कहीं इसमें डूब ना जाए, हम डूबा ना दे कहीं ये। तो निरंतर जैसे बरसात रहने से निरंतर ज्ञान की बरसात अपने पर होती रहनी चाहिए, योग के अलग अलग बाबा के प्यार की बरसात हमारे पर होती रहनी चाहिए। शक्तिशाली सोमान है, इतने बाबा ने ढेर सारे एक ही सोमान पकड़ लो, बस उसका सारे दिन चिंतन करते रहो, उस पर अपने आप प्रयोग करते रहो, जैसे वहाँ चार्ट में लिखा हुआ है सारे दिन में चलते फिरते एक ही चीज, और दूसरा संकल्प नहीं करना, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ और मेरे अंग अंग से पवित्रता की एक किरणें निकलकर सारे संसार में प्रभावित हो रही हैं, बस इसी संकल्प में चलते फिरते रहो, दूसरा करने की जरूरत नहीं, ये हमारा संस्कार बन जाएगा, और ये संस्कार फिर हमको याद करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल हो जाएगी, है ना। बहुत साल पहले ग्रुप में आपस में बैठ के डिस्कशन करते थे, तो एक भाई हॉस्पिटल से आते थे यहाँ, तो चलते फिरते उनका यही प्रयास था, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ और चमकता हुआ सितारा हूँ मस्तक में, लंबे समय से हम अमृत बिल्ला बोई करते थे बैठ के प्रयास, और वो एक आदत ही पड़ गई थी, वो आधा घंटा साढ़े तीन से चार कैसे बीता था पता नहीं चलता था, तो टाइम को हम सेट कर देते थे कि इतना टाइम हमको ये करना है, उसी सोमान का अभ्यास करना है, बस अंदर ही देखते रहना कि मैं इस आसन पर बैठी हूं। आज बाबा ने आसन दिया ना हम सबको, कौन सा आसन दिया, ये चार जो सत्ताएं थी ये आसन है, बाबा कहते इस आसन पर बैठे रहेंगे तो बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। तपस्या के लिए बाबा ने कहना आसन होता है, ये पांव है, अगर एक भी पांव तो ढीला हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसे ज्ञान योग धारणा के भी चार पांव हैं, अगर थोड़ा सा भी हम किनारे हुए तो माया एकदम अटैक कर देगी, और पुराने संस्कार तो बैठे हैं घात लगा के बैठे हैं, कब ये थोड़ा सा ढीला होते तो पकड़ ले इनको, टांग खींच दे इनकी। तो लंबे समय से अभ्यास करना है, जब भी हम बैठते हैं तो टाइम पहले से सेट कर दो कि अभी हमको क्या करना है। भले 10 ही मिनट बैठते हैं, उसको डिवाइड कर दो, दो दो मिनट में डिवाइड कर दो, 5-5 मिनट में, कि 5 मिनट में बस फरिश्ता हूँ, बस मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। ये शरीर पूरा लाइट का ही है, मेरी आंखें लाइट की हैं, मेरा मुंह लाइट का है, ये हाथ लाइट के हैं, ये सारा सिर लाइट का है, पाँव लाइट के हैं, पूरी बॉडी लाइट की है। जैसे मेरी आंखों से लाइट की रेज की किरणें निकल रही हैं, चमकीली आंखें हैं, फरिश्ता हूँ मैं, परम पवित्र फरिश्ता हूँ। जैसे पूरे शरीर से पवित्रता की वाइब्रेशन जैसे फैलते जा रहे हैं, बताया ना, इस शरीर का शुद्धिकरण करना बहुत अनिवार्य है। नहीं तो हमारा देह भी, अगर हमारे देह के प्रति भी किसी का आकर्षण होता है तो भी एक बोझ है, अगर हम दूसरे के देह के प्रति आकर्षित होते तो भी बोझ है। इसलिए देह का शुद्धिकरण बड़ा अनिवार्य है। इसलिए रोज बाबा से दृष्टि लेनी पावरफुल, और वो पूरी दृष्टि जैसे हमारे अंग अंग में समा गई है, और योग के प्रयोग जैसे बताया कि मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ और संपूर्ण बॉडी मेरी पवित्र बॉडी है, और वास्तव में है, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी है क्या वो पवित्र नहीं बना होगा। बाबा ने तो कहा ना, जन्मते तुमको मैंने वरदान दे दिए, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र भाव योगी भाव। वो तो हम बनेंगे उसी समय, लेकिन उस संपूर्णता को, संपूर्णता के आसन से हमने नीचे उतर कर फिर पुराने वाले कर्म करना चालू कर दिए। आई बताया ना, अतीन्द्रिय सुख और फरिश्तेपन की, अगर बाप के साथ में रहेंगे तो ये अनुभूति होती रहेगी। तो बार बार हमको इस देह को भी शुद्ध करने का प्रयास करना है, और जितना हम इसको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, ऑटोमेटिकली हम अपने आसन पर बैठकर तपस्या का वो आनंद ले पाएंगे, सुख ले पाएंगे, वो तपस्या में रस आएगा, बैठने में मजा आएगा। जैसे योग का टाइम होगा तो लगेगा 1.5 घंटा बैठे ही रहे, और वास्तव में सबसे जो मजा ना वो योग में ही है, क्योंकि योग में तुमको और कुछ सोचना नहीं है, संसार के धंधे तो सोचने नहीं है, थोड़ा सा तुमको टाइम मिलता है, उसमें तो हमको भगवान के साथ ही बैठना है। यही सोचो कि मैं और भगवान बैठे हुए वापस आपस में, बस हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, उसने तो बातचीत कर दी, 4 पेज की मुरली सुना दी, अब मेरी बारी है। क्या सुनाएंगे? कि जो उसने कहा वो उसको अंदर में रिकॉल करो, तो बाबा भी देखेगा हाँ मेरे महावाक्यों का इनको कदर है। अगर हम उसका कदर ही नहीं करेंगे तो वो भी प्यार कैसे करेगा। कोई चीज आपने हमको दे दी है, मैं उसको यूज नहीं किया, उसको फेंक दिया, और आपने 2-4 दिन बाद देखा है तो इसने फेंकी हुई है, तो आपकी मेरे प्रति क्या मंशा हो जाएगी। 8-10 दिन पहले मुरली थी कि जो बाप के महावाक्यों का बरसे का कदर नहीं करते हैं, बाप भी बरसा देने में डैश करते हैं, क्या है आनाकानी करते हैं, तो बाबा भी आनाकानी करेगा। वो तो निस्वार्थ रूप से सबको देता ही है, लेकिन लेते नहीं है। बाबा तो रोज अमृत वेले हमको शक्तियों का घी पिलाता है, गुणों से श्रृंगार करता है, इतने खजानों से संपन्न करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी झोली कहीं और ही छिपा के आ जाते हैं, क्योंकि दूसरा माल बहुत रखा हो भर के, वो अपनी झोली हम उसको दिखाते नहीं है, सुदामा मिसल। तो जो भी कमी कमजोरी है उनसे भी हमको घबराना नहीं है, हैं तो हैं, बता दो बाबा को, लेकिन छोड़ने का प्रयास करो, नहीं तो स्लोगन वो केवल मुरली के वो उस कागज तक ही सीमित रह जाएगा। खुद को देखना रोज, खुद को देखो, अर्थात पहले स्वयं मैं आत्मा हूं, देखते रहो बस, उसको देखते रहो, बाप भी बोर होते रखो, ओहो मैं ज्योति बिंदु चमकती आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती है, कमाल है, मैं तो इस शरीर में जैसे जब चाहे निकल सकती हूं, जब चाहे आ सकती हूं। कितनी सुंदर बाबा ने हमको विधि बता दी, विज्ञान तुम हो बेहद के विज्ञानी, 1 सेकंड में आत्मा मन बुद्धि के द्वारा परमधाम चली जाती है, बाबा ने कहा। तो कितनी ऊंची टेक्निक बाबा ने हमको दे दी, सोचो जैसो, ओहो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, बाबा ने मुझे कितना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया, कि इस शरीर से डिटैच हो जाती हूँ, वो कितना खर्चा करे संसार में, आत्मा को अभी भी नहीं पकड़ पाए, बताओ। और बाबा ने आगे कहा सीधा, तुम आत्मा हो, झंझट ही खत्म, कितना सहज बता दिया। और संसार में कितने विद्वान हैं, बताया ना, कि चैलेंज करते हो किसको, नेताओं को, अभिनेताओं को, विज्ञान वालों को, क्या चैलेंज करते हो, बेफिक्र बादशाह का जीवन देखना तो यहां कर देखो। तो बेफिक्र बादशाह का जीवन कब होगा, जब पहले मैं खुद को देखूंगा कि सचमुच मैं इस शरीर से डिटैच हूं, कितना शक्तियों से भरपूर हूं, जो उसके सारे के जानने वो मेरे अंदर भरे हुए हैं, जो उसके संस्कार है वो सारे मेरे अंदर में हैं, जो उसकी दृष्टिवृत्ति है वो सारी मेरी है, जो वो सबके प्रति उसकी भावना है वो मेरी है, जो वो विश्व कल्याण के कल्याणकारी की मंशा रखता है वो मेरी मंशा है। तो खुद के प्रति खुद को देखना है फिर, तो जो कमी है वो अपने आप ही भरती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, तो फिर खुदा का प्यार बरसने लगेगा। तो चिंतन को बढ़ाना है, बुद्धि को ब्रॉड बनाना है, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। कब आंखें बंद हो जाएंगी भरोसा नहीं, आंखें तो क्लास में ही बंद हो जाती हैं, लेकिन अभी तो सभी की खुली है कि बारिश भी चालू है ना। तो माया कब प्रवेश कर जाती है कि भरोसा नहीं। नींद इसलिए हमको आती है, और नींद आती है ना उसका कारण ढूंढना हमको, इसलिए बताया लंबे समय तक जीवन में बैलेंस चाहिए हर चीज का। एक ही चीज के पीछे भागते रहेंगे क्योंकि शरीर को रेस्ट देना भी जरूरी है, जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि बहुत कीमती घोड़ा ये, भले ये पुराना है लेकिन इस पुराने इस शरीर में तो रह के हम भगवान को पा रहे हैं। और सौभाग्य जो इतना ये तन हमको भगवान द्वारा प्राप्त हुआ है, ये उसकी अमानत है। इसमें बैठ के मैं आत्मा पुरुषार्थ कर रही हूँ, इसमें बैठ के मैं भगवान से मिलन मना रही हूँ, इसमें बैठ के मैं भगवान से दृष्टि ले रही हूँ, इसमें बैठ के मैं भगवान से के सर्व ज्ञानों से भरपूर हो रही हूँ। तो अपने आप से बातें करनी है, अपने से अपना रिगार्ड रखना, अर्थात अपने से बातें करना, सोमान को जागृत करना है, अपने आसन पर बैठे रहना। बाबा ने कहा आसन से नीचे उतरते हो तो ही सारी हलचल होती है। अति हलचल में अति अचल, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ आज के मूल्य में था। अति हलचल में अति अचल, और क्या बताया आज के मूल्य में? एक तरफा तो अभी आप भी तो बताओ कुछ, ताकि हम भी तो कुछ सीख सकें आपसे। बताओ बताओ, बहुत सारी बातें अभी तक। हाँ जी, कर्म योगी श्रेष्ठ कर्म, हाँ श्रेष्ठ कर्म अभी करेंगे तो 21 जन्म हम खाते रहेंगे आराम से बैठ के। और क्या कहा? एकांत में बैठ के, अंतिम पेपर जो है, नहीं समझना कि एकांत में बैठ के पेपर आएगा, वो हलचल में आएगा, उसमें अति हलचल में अति अचल की स्थिति। और क्या कहा? चलो आज का छोड़ दो, कल की मुरली का सुना दो, वो तो याद होगा सारा, पता बड़े मुस्करा रहे हो इधर। चलो परसों का सुना दो। हाँ, कल की मुरली में स्लोगन था ना, पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सारे विकारों को भस्म कर देती है। तो अपनी पवित्रता को बढ़ाना धीरे धीरे, हर एक मां बाप की उम्र में पवित्रता समाई हुई है, पवित्रता छिपी हुई है, तो उसको चिंतन करना, लिखना, पढ़ना, सुनना सुनना। जब भी आपस में बैठते हैं मुरली का चिंतन करो। कल की मुरली का धारणा सार था ना, या आने वाले काल का है, ज्ञान के सिवाय कोई भी बात नहीं करनी है। आज कल था, कल था नहीं, वो तो श्रीमत पर नहीं चलना बेकार है, वो ये था। हाँ तो कितनी बड़ी बात है कि कोई भी बात ज्ञान के सिवा हुई। और हम चेक करें सारे दिन में कितनी बातें करते जाते हैं, घर में सास बहू की करेगी तो बहू सास की करेगी, कुछ ना कहीं तो बातें होती रहती हैं। आज ब्राह्मणों में भी आपस में कोई ना कोई तो एक दूसरे का साथी बना ही लेते हैं हम। यहाँ भी बहुत सूक्ष्म रूप से जो बाबा कहते सोने की जंजीर खुद तैयार कर लेते हैं, लोहे की जंजीर से निकल के आ गए लेकिन सोने की जंजीर में फंस जाते हैं। और सोना तो बड़ा अच्छा लगता है, और उसमें फिर हम हीरे मोती भी लगा देते हैं, उसको उतारना मुश्किल लगता है फिर। इसलिए अलौकिक परिवार में भी आकर हमको उतना न्यारा प्यारा रहना, बहुत न्यारा प्यारा, क्योंकि अलौकिक से अगर हमारी गहरी अटैचमेंट होगी तो बहुत बाधक होगी फिर वो। इसलिए अकेले का मार्ग है, बाप बाबा के सिवाय किसी को अपना साथी नहीं बनाना है, उसको अपना साथ रख। आज के था ना मुरली में पार्टियों के साथ मुलाकात, एक ऊंचे तो ऊंचा बाप ही सबसे प्रिय है, वो ही प्रिय चीज है। तो दूसरी कोई संसार में कोई प्रिय चीज है ही नहीं, तो प्यार करें किसे? प्यार करके तो जन्म जन्म करते देख ही लिया ना क्या हुआ, दुर्गति होगी, सत्यानाश होगी सबकी। अब तो बाबा आया, तुम दुर्गति में चले गए, तुम सदगति करने के लिए आया हुआ, फिर भी उसने उपकार किया, कितनी गालियां दी भक्ति मार्ग में। वो तो बाबा ने बोला लास्ट में देख लूंगा मैं तुमको, चमड़ी उधेड़ के ले जाऊंगा एक एक को, जो गालियां दी ना गिन गिन के हिसाब लूंगा। लेकिन हमने तो महिमा की थी ना, फिर बताएगा वो भी। तो जितने भी बाबा के महावाक्य उन पर नजर रखनी है। और क्या कहा आज की मुरली में? हाँ जी, सेवा, हाँ सेवा ऐसी हो जो बाबा संतुष्ट था। उसमें राज्य सत्ता में था कि राज्य सत्ता अर्थात सर्व पर अधिकार रखने वाले, सबका दिल जीतने वाले, दिल जीतने वाला अर्थात सबसे संतुष्टता के बाबा के पुष्पों की वर्षा हमारे पर होती है कि वो संतुष्ट हो जाए। चाहे हम लौकिक में रहते, लौकिक में रहते भी भले कोई ज्ञान में नहीं है, उनसे भी हमको प्यार से चलना है। भले कोई ज्ञान सुनता नहीं, कम से कम थोड़ी खुशी तो दे दो उनको। हम देखते हैं ओम शांति, उनमें सुनने के लिए आते हैं बहुत सारे टूरिस्ट, कोई नहीं सुनना चाहते बिल्कुल भी, तो उनके अनुसार ही चलना पड़ता है। थोड़ा मुस्करा के, कोई बात नहीं, नहीं सुनना ना सुनो, थोड़ा ऐसे घुमा के ले आते हैं हम। अगर बोले हम 5 मिनट टाइम है, तो क्योंकि वहाँ लिखा आधा घंटा, तो आधा घंटा सुन के भारी हो जाते हैं कहीं तो, क्योंकि वो तो घूमने मौज मनाने आए हुए हैं। तो हम उनको कहते हैं 5-10 मिनट, ही ज़्यादा नहीं टाइम लेगा। जब बैठते हैं तो धीरे 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 फिर आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है। और जो नहीं सुनने वाला पहले से हाँ बाबा का पता चल जाता, तो उनको वैसे रवाना कर देते हैं। लेकिन उनको थोड़ा प्यार से, थोड़ा खुशी देकर, थोड़ा उनके साथ फोटो ही खींच लो, तो उसी से खुश हो जाते हैं वो। कुछ तो हमारे से अनुभूति होनी चाहिए। इतने लंबे समय से भगवान के साथ हम रह रहे हैं, जैसे वो जड़ मूर्ति कितना अनुभव करा देती है, हम तो चलती फिरती चैतन्य मूर्ति हैं। कुछ तो अनुभव होना चाहिए किसी को भी, चाहे लौकिक में है, ज्ञान में है, नहीं है, सब बाबा के बच्चे हैं। ऐसी मेंटेलिटी रखनी है, नहीं तो क्या थोड़ा सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि हमको सारा बाबा का ज्ञान है और उनको ज्ञान ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर वो ज्ञान में आ गए ना, हो सकता है कल को हमारे से आगे चले जाएं और बाद में हम भी खड़े होंगे बाप उनका स्वागत करने के लिए, उल्टा काम हो जाएगा फिर। वो देखे क्या सोचा था, क्या हो गया, बाबा आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो ऐसा ना हो जाए। इसलिए घर में हमको प्यार की मूर्ति बन के रहना है, खुशी की देवी बन के रहना है, खुशी का देवता बन के रहना है। निरंतर सोचना, जैसे घर में परमात्म वाइब्रेशन भर गए हैं, परमात्म प्यार घर में भरा हुआ है, घर के कोने कोने में भरा हुआ है, किचन में। किचन तो वास्तव में किसका शब्द है, इंग्लिश का। पहले शब्द क्या होता था, रसोई, जिसमें रस होता था, और किचन अर्थात जहां किचकिच होती रहती है। ये शब्द सारे गड़बड़ कर दिए, इसलिए प्राचीन भारतीय संस्कृति का जो शब्दावली है वो उसमें बहुत कुछ समाया हुआ है, उसमें प्यार भरा हुआ है। तो ऐसे बाबा की बहुत सारी बातें हैं। तो सार रूप में, मुरली से प्यार करना है, मुरली से बढ़ाना है, चिंतन करना है, अच्छे अच्छे ज्ञान के प्रयोग करने हैं, बाबा को हमेशा अपने साथ रखना है, क्योंकि कब आंखें बंद हो जाएगी भरोसा नहीं है। ओम शांति।